मीट्स मी ये शुरू।
हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं स्मिता माथुर, और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे सुबह सुबह अपने गुरुजी का संदेश मिला कि हालांकि बाहर चारों ओर बहुत त्रासदी है, बहुत भय है, और बहुत विकराल रूप लेके एक प्रलय का रूप चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन इस समय भी इस समय हमें ऐसे चेहरों की ज़रूरत है जो चमकते हों, जो हंसते मुस्कुराते रहें, और जिनको देख के बाकी लोग खुशी मिले। तो मुझे लगा कि नहीं, इस समय तो और ज़रूरी है कि सब लोगों के संपर्क में आए, सबसे बात करें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं खास तौर से इसीलिए एक हंस रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ कि शायद आपको मुझसे मिल के और मेरी कहानी सुन के आप लोगों को कुछ चेंज मिले, कुछ खुशी मिले, कुछ आनंद मिले। तो मेरी आज की कहानी का नाम है दुर्गा, और ये कहानी समर्पित है मेरी एक बहुत ही प्रिय सहेली को, जिन्होंने सदैव मेरा मार्गदर्शन भी किया और समय समय पर उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी। उनको समर्पित है मेरी ये कहानी जिसका नाम है दुर्गा। बैठी थी, उसका पूरा शरीर और चेहरा पसीने से तर बतर था। कमरे में चारों ओर अंधेरा था। माँ के कमरे से हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। कुत्तों के चीखने की आवाज से लग रहा था कि रात के 12-1 बजे के आसपास का टाइम है, पहली नींद पूरी होने का समय। अक्सर इसी समय उसको ये भयंकर सपने आते हैं। आग चारों ओर आग फैली थी। एक जलती हुई ट्रेन ब्रिज के ऊपर, और फिर ब्रिज टूट जाता है और ट्रेन के जलते हुए डब्बे अंधेरी काली भयानक नदी में गिरते हुए। शोर, घबराहट और चीखें, ये सब क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, वो किसे क्या बताए। उसे पता है कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन कहाँ और कब ये उसे नहीं पता। और अगला पूरा दिन उसका घबराते घबराते निकला था। टीवी में, रेडियो में वो कान लगाकर सुन रही थी और एक दिन बाद ही टीवी पर ये समाचार आ गया था। गुजरात में अहमदाबाद के पास फ्रंटियर मेल में आग लगी और पुल टूटने से जलते डिब्बे नीचे बहती नदी में गिरे और वो खबर सुनकर सिहर उठी थी। अपना तकिया उठाकर उसे सीने से चिपकाकर फूट फूट कर रोई थी। यदि ईश्वर ने उसे ये शक्ति दी है कि आगे आने वाली घटनाएं उसे दिख जाती हैं, तो इतनी शक्ति और देता कि कहाँ और कब हो रही हैं, तो वो किसी को चेतावनी तो दे पाती जिससे दुर्घटना को टाला जा सकता, लेकिन शायद अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। और उसके भयानक सपनों में कभी उसे समुद्र की ऊंची लहरें दिखाई देती। सब कुछ बहा जा रहा है और कभी टुकड़े टुकड़े होकर गिरता एरोप्लेन दिखता जो किसी घनी बस्ती पर गिरा है, और एक दो दिन बाद ही कभी सुनामी और कभी पाकिस्तान में घनी बस्ती पर गिरते हवाई जहाज के रूप में उसके सपने सच हो जाते और वो फड़फड़ा कर रह जाती किसी पर कटी चिड़िया के समान जो अपने ही घर के आंगन में घूमती रहती है, आकाश को देखती हुई। चारों ओर लोहे के सरियों का पिंजड़ा है और वो उसमें कैद है। मोटे मोटे आंसू उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बहने लगते हैं। माँ कहती है उसमें देवी का अंश है, तभी तो उसका नाम उन्होंने कमला रखा था, कमला लक्ष्मी जी का रूप, कमल के फूल पर विराजमान, वैसी ही सुंदर और सौम्य। भाई बहनों में सबसे छोटी, बड़े भाई बहनों की सबकी शादियां हो गई थी। सबसे छोटी दीदी से वो 10 साल छोटी थी। माँ की कोक की धुली पुछी आखिरी संतान, लेकिन माँ के प्यार में कोई कमी नहीं थी, बल्कि माँ बाबूजी दोनों उसे बहुत प्यार करते। गोल भोला चेहरा, गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, चौड़ा माथा, तीखी नाक और पतले पतले होंठ, बस उसका शरीर ही गदबदा सा था और हाइट सामान्य से कुछ कम। पढ़ने में उसका बहुत मन लगता, अपने सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में उसे बहुत इंटरेस्ट आता था। देर रात वो पढ़ाई करती और साथ में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी। उसका एक ही लक्ष्य था, उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। और जब सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद उसे पीडब्ल्यूडी में ऑफिस जॉब मिल गई थी, वो बहुत खुश रहने लगी थी, बहुत खुश हो गई थी। उनके ब्राह्मण समाज में इतना दहेज चलता है, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी विवाह की कोई चिंता नहीं। किसी दहेज के लालची इंसान से वो वैसे भी शादी नहीं करेगी। उसे एक सीधा साधा सच्चा इंसान चाहिए जो उसके गुणों की कद्र करे। आवाज उसकी ऐसी मीठी जैसे शहद घुला हो। अक्सर अपनी सुरीली आवाज में वो देवी के भजन गाती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन, दोनों समय पूजा पाठ और ऑफिस का काम मन लगाकर करना। अक्सर सिंपल सलवार कुर्ते और दुपट्टे में ही वो ऑफिस जाती, अक्सर लाल या पीले। कभी कभी किसी अवसर पर साड़ी पहनती, वो भी सूती, और माथे पर एक चंदन का हल्का सा टीका लगा होता। माँ अपनी बेटी पर निहाल थी, बस कभी कभी उसके भविष्य की चिंता उसे खाई जाती। इतनी सीधी लड़की, दहेज के अभाव में इसकी शादी कैसे होगी? और बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र 29-30 साल हो गई थी। बाबूजी को रिटायरमेंट भी तो बरसों बीत गए हैं, बस अपने पैरों पर खड़ी है यही संतोष था। नवरात्रों में वो 9 दिन का मौन व्रत रखती, सिर्फ फल और दूध। सुबह 5 बजे उठकर नहा कर पूजा करती और घंटों ध्यान में बैठी रहती। ऑफिस में वो अपना काम तो अच्छे से कर लेती, लेकिन किसी से बात ना कर पाने के कारण बड़ी परेशानी होती। ऑफिस से लौटते में बस से उतरकर रिक्शा करते में उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कैसे समझाए रिक्शा वाले को कि कहाँ जाना है? और उसके बाद माँ ने ही इसका उपाय ढूंढा था। नवरात्रि भर माँ उसके लिए एक रिक्शा बांध देती, जो उसे बस स्टॉप से शाम को लेता और सुबह छोड़ता। शाम को जब वो 6 बजे ऑफिस की बस से उतरती, रिक्शा वाला स्टॉप पर खड़ा मिलता और झटपट उसे घर पहुंचा देता। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, और आशा है कि आपको मेरी कहानी दुर्गा अच्छी लग रही होगी। और समाज में हमें कई तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो दुर्गा जो है उनका ये कमला नाम है उनका, तो कमला का कैरेक्टर कुछ अलग है लेकिन बहुत ही सात्विक और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है। तो चलिए आगे की कहानी दुर्गा नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, और मैं स्मिता माथुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में मैं आपको कहानी सुना रही थी एक महिला की, एक लड़की की, जिसका नाम है कमला और कहानी का नाम है दुर्गा, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि उसमें देवी का अंश है। तो उसमें कुछ उसको बहुत ही सिंपल लड़की थी, पढ़ने लिखने वाली, और उसको जॉब भी मिल गई थी टाइम से PWD में। तो ऑफिस स्टाफ में थी वो, जॉब करती थी। उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि उसको अनहोनी का आभास हो जाता था, उसको सपने में ही बहुत सी दुर्घटनाएं दिख जाती थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा कब और कहाँ होगा। इसलिए वो किसी को बता नहीं पाती थी, किसी को चेता नहीं पाती थी, और इस लेवल की घटनाएं होती थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कि वो बताए भी तो किसको बताए। तो इसलिए वो कई बार बहुत परेशान हो जाती थी अपने भयानक सपनों से। नवरात्रों में वो नौ दुर्गे का व्रत करती थी, और इसके अलावा मौन व्रत करती थी, बोलती भी नहीं थी 9 दिन। इसलिए 9 दिन उसको थोड़ी उसको परेशानी होती थी क्योंकि लोगों से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी निष्ठा से व्रत को करती थी। तो बस ऐसे ही नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, और उसकी दहेज की वजह से उसकी शादी बहुत जल्दी नहीं हो पा रही थी, तय तो उसकी उम्र जो है 28-29 साल हो गई थी। चलिए अब इसके आगे की कहानी। दुर्गा कुछ बचपन से मिली दैवी शक्तियों का प्रभाव था और कुछ उसके व्रत उपासों और ध्यान का, कि अक्सर वो लोगों की हाथों की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बता देती। डिपार्टमेंट के लोग उसके पास अपनी और अपने बच्चों की जन्म पत्रियां लेकर आते और उन चौखानों में उसे पता नहीं क्या दिखता, वो उनके भविष्य का ऐसा खाका खींचती कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। विदेश यात्रा कब होगी, घर कब बनेगा, बच्चे का सिलेक्शन कहाँ होगा, वो चुटकियों में बता देती और समय आने पर वो सच भी निकलता। मैडम देखिए जरा हमारा प्रमोशन कब होगा, मैडम हमारे बच्चे का IIT में सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैडम हमारा घर कब बनेगा, अनेक प्रश्नों से वो घिरी रहती। कभी कभी वो ऐसी भविष्यवाणियां करती कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। सर आपकी पत्रिका बता रही है कि आप एक दिन इंजीनियर इन चीफ बनेंगे, PWD। अरे कहाँ मैडम, अभी तो हम ऐसे भी नहीं बने, कैसे बनेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। और 5 साल बाद जब आउट ऑफ फ्रंट प्रमोशन होकर सिंह साहब इंजीनियर इन चीफ बन गए थे, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, सबसे पहले उन्होंने पांडे मैडम को ही बुलाकर मिठाई खिलाई थी। मैडम देखिए आपकी बात सच हो गई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उससे आकर कभी हाथ की रेखाएं और कभी जन्म पत्र दिखाते और अपना भविष्य जानकर हतप्रभ रह जाते। मैडम मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है, क्या करें, आप रोज दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। मैडम मेरे बच्चे के बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करें, राम रक्षा स्रोत का पाठ करिए। किसी को हनुमान चालीसा तो किसी को ग्रह शांति के लिए उपाय बताती। कुछ नहीं, मंगल के मंगल गाय को लाल मसूर की दाल और गुड़ खिलाइए, बड़े से बड़ा राहु केतु टल जाएगा। मैडम आपको सब कैसे पता चल जाता है। पता नहीं, देवी की कृपा है, आंखें बंद करके अंदर से जो आवाज आती है वही बता देते हैं। कभी कोई उसे गिफ्ट या रुपए पैसे देना चाहता तो वो साफ इनकार कर देती, नहीं नहीं ये देवी का वरदान है, यदि मैंने दक्षिणा ली तो ये शक्ति समाप्त हो जाएगी, मैं लोक कल्याण के लिए ही ये काम करती हूँ। और वाकई धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया था, चमकने लगा था उसका चेहरा। जैसे वाकई उसके मुख से वो नहीं देवी ही बोल रही हूँ। उसके व्रत उपास और बढ़ गए थे। मस्तिष्क की उसी किसी उच्चतम अवस्था में उसे ये सपने आते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के सपने, और इस अधूरी जानकारी से वो हलाकान हो जाती है। समय बीतता गया और बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र 34-35 साल हो गई। शरीर भी भर गया था और चेहरे पर कुछ उम्र भी झलकने लगी थी। सबको भविष्य बताने वाली मिस पांडे खुद अपना भविष्य नहीं बांच पाती थी। क्या वो ऐसे ही जीवन भर नौकरी करती रहेगी? उसका भी तो सपना है, अपना घर, एक प्यार करने वाला पति और नन्हे मुन्ने बच्चे। माँ जहाँ कहीं भी रिश्ते की बात करती, लड़की की बढ़ती उम्र और दहेज का राक्षस उसके सपनों को निगल जाता। और तभी बड़ी जिया जी उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। उनके परिवार में एक अच्छा शिक्षित लड़का था जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता था। छोटे भाई बहनों की शादी करते करते उम्र 40 को छूने लगी थी। बिन बाप के बच्चों को उसने बाप बनकर ही पाला था। शादी की उम्र जिम्मेदारियां पूरी करते करते ही निकल गई थी। कमला की तस्वीर और उसके गुण उसके मन को आशा से भर गए थे। शायद वही उसके जीवन संगनी बनने के योग्य थी। सांवले सलोने लेकिन भावुक सी आंखों वाले प्रशांत ने कमला का मन मोह लिया था और शीघ्र ही मंदिर में आर्य समाजी ढंग से शादी करके वो विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए थे। कमला के सलवार कुर्तों की जगह सिल्क और जॉर्जेट की साड़ियों ने ले ली थी। माथे पर लाल बिंदी, दब दब करता लाल सिंदूर और चमकता चेहरा, लाल बिंदी के नीचे लगी हल्की सी चंदन की बिंदी। सुबह शाम प्रशांत उसे ऑफिस छोड़ देता और शाम को ठीक 5 बजे उसका स्कूटर गेट के बाहर खड़ा होता। ऐसे प्यार करने वाले पति को पाकर कमला निहाल हो उठी थी। रात को जब पति के सीने में सिर छुपाकर वो सोती, जैसे उसका चित ठंडक और आनंद से भर जाता। कहाँ गए वो डरावने सपने? उनकी जगह शांत स्निग्ध नींद आती। हे देवी माँ, अब मुझे वो सब शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने की हिम्मत दो। और धीरे धीरे वो शांत होती चली गई थी। उसने लोगों की जन्म पत्रियां और हाथ देखने छोड़ दिए थे। नवरात्रों में व्रत उपास तो करती लेकिन मौन व्रत नहीं। पति का प्यार, घर गृहस्थी और ऑफिस, अब यही उसका जीवन था और मन में परम शांति। लोग कहते शादी के बाद मिसेस पांडे की शक्तियां खत्म हो गई हैं, वो संसार में डूब गई है। वो सर झुकाकर सबकी बातें सुन लेती। अब घर और गृहस्थ जीवन की खुशहाली ही उसका ध्येय था। जीवन के वानप्रस्थ आश्रम में देवी ने चाहा तो फिर अपनी शक्तियां वो जागृत कर लेगी। और फिर से लोगों को गाइड करेगी और पूजा पाठ करेगी और लोगों का हाथ देखेगी और रेखाएँ पढ़ेगी। लेकिन अभी नहीं, अभी गृहस्थ जीवन, पति के साथ परम अच्छा खुशहाल जीवन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, और मैं स्मिता माथुर, और मेरी इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है न्यूली वेड। तो इस बार मैं आपके लिए कहानी लेके आ रही हूँ अपनी, मेरी जो सेकंड बुक है वो कुछ जानी कुछ अनजानी, इसका नाम है। इसकी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक एक कहानी हर सैटरडे को सुनाऊंगी, और अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप ये बुक परचेज भी कर सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो मैंने देखा कि लोग ऑडियो स्टोरीज बहुत पसंद करते हैं और उनके लिए बहुत इजी होता है उसको सुनना और उसको इन्जॉय करते हैं, तो सोचा ठीक है छोटी छोटी कहानियाँ मैं इसमें से आपको सुनाऊँगी हर सैटरडे को। तो मेरी नई कहानी, इस कहानी का नाम है न्यूली वेड। लगभग 10:30-11 बीच का समय रहा होगा, तनुजा अपने पति के साथ एक सुपर फास्ट ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास के 4 बर्थ वाले कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रही थी। ट्रेन के स्टार्टिंग स्टेशन से उसके सामने की दोनों बर्थ खाली चली थी। तनुजा के पति अर्धनिंद्र से अपनी अपर बर्थ पर लेटे हुए थे। तभी कंपार्टमेंट के शटर पर कंडक्टर ने धीरे से नॉक किया, खट खट। तनुजा ने लाइट ऑन करके शटर खोला। कंडक्टर के साथ एक युवा जोड़ा था। कंडक्टर उन्हें उनकी बर्थ दिखाकर चला गया और लड़के ने धीरे से सरकाकर शटर को बंद कर दिया। वह बड़ा ही प्यारा कपल था, एक दूसरे को छेड़ता गुदगुदाता। लड़की लंबी पतली गोरी, ब्लैक स्किन टाइट जीन्स और डार्क पिंक पूरी बाहों के टॉप में वो बड़ी सुंदर लग रही थी। हाथ हाथ भर की चूड़ियों को उसने अपनी पूरी बाहों की टी शर्ट में छुपा रखा था। हाथ पैरों में मेहंदी लगी थी, लेकिन बिच्छी और बिंदी सब उसने उतार कर रखे थे। शायद उसकी मम्मी ने कहा होगा कि घूमने जाओ तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। लेकिन क्या नया नया ब्याह छिपाए छुपता है? दोनों नीचे वाली बर्थ पर एक दूसरे के साथ सट कर बैठे हुए थे। उसके सम्मोहन पांच पे बंधा लगाव भरी दृष्टि से दिन में उसकी ओर देखता उसका पति, एकटक उसकी ओर देखता उसका पति, अपनी नशीली और कुछ कुछ सपनीली आंखों से अपने दिल की कहानी कह रहा था। कभी वे मोबाइल पर अपना वीडियो गेम खेलते, कभी एक दूसरे को छेड़ते और कभी गुदगुदाते। तनुजा ने अपने बर्थ पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। तनुजा की नजर इधर उधर होते ही उसके बेहद खूबसूरत मगर बेचैन पति ने उसे चूम लिया था और बदले में उस लड़की ने भी उसे चूम लिया था। तभी लड़का शटर खोलकर शायद वॉशरूम चला गया। वह लड़की अकेली बैठी धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। लड़के को वापस लौटने में कुछ समय तो लगना ही था। उसी बीच तनुजा ने आंखें खोलकर उस लड़की से हल्के अंदाज में बात करते हुए पूछ ही लिया था, हल्की हल्की आवाज में, तुम लोग न्यूली मैरिड हो? हाँ आंटी। लव मैरिज है? लव कम अरेंज्ड। हम दोनों तो बचपन के दोस्त थे, पास पास ही रहते थे। दोनों के पेरेंट्स ने मिलकर शादी तय कर दी। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे हमारी शादी भी हो जाएगी। तभी वह लड़का लौट आया और उसने शटर फिर से बंद कर लिया था। लड़के ने लाइट्स ऑफ कर दी, बस नाइट लैंप का हल्का नीला प्रकाश बिखरा हुआ था। वे दोनों फिर एक दूसरे से सट कर बैठ गए और खुशफुसाहट भरे शब्दों में बतियाने लगे। रात काफी गहरा गई, पता नहीं कब तनुजा नींद के आगोश में समा गई। रात लगभग 2-3 बजे के बीच किसी आवाज से तनुजा की नींद टूटी। सामने की बर्थ पर वह नवयुगल जोड़ा एक ही कंबल में लिपटे हुए बेसुध सो रहा था, मानो एसी फर्स्ट क्लास का वह कंपार्टमेंट ही उनका मधुयामिनी कक्ष हो। पति की मजबूत बाहों में चेहरा छुपाए वह अल्लाह नववधु सो रही थी। उसके पूरे लंबे बाल कंबल से बाहर लटक रहे थे और मासूम मुखड़ा हनीमून के ना जाने कौन से सपनों में खोया था। चेहरे पर मंद मुस्कान लिए करवट बदल कर तनुजा भी पुनः नींद की गोद में समा गई और रात के सन्नाटे में गाड़ी अविराम तीव्र गति से गंतव्य की ओर बढ़ती रही। तो बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस है और जिसने की कहानी का रूप ले लिया। कहानी हमने आपको सुनाई जिसका नाम है न्यूली वेड। तो बस मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है, और क्योंकि बहुत छोटी सी कहानी है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बहुत प्यारा सा एक इसके साथ में एक कविता भी सुना देती हूँ जिसका नाम है, ये भी न्यूली वेड से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है फूलों के गहने। मेरे प्रियतम मुझे पहना दो फूलों के गहने, मेरे प्रियतम मुझे पहना दो फूलों के गहने। बैरल पायल चुभती है रात भर, बैरल पायल चुभती है रात भर, बैरी बिछिए कसकते हैं रात भर। झुमकी के तार छील देते हैं कानों को, मेरे प्रियतम मुझे पहना दो फूलों के गहने। बैरन चूड़ियां खनकती हैं रात भर, मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों का कंगना। मैं महकेंगे फूल रात भर, बेले के गेंदे के, मेरे कोमल हाथों को सहेजेंगे ये फूल। कोमलता से देखभाल करेंगे उनकी, फूलों से महक उठेगा आंगन। अमराई के नीचे मह मह महक उठेगी फूलों की पंखुड़ियाँ। हम तुम दोनों होंगे फूलों की चादर होगी, और मह मह महकते तन मन होंगे। बैरन पायल चुभती है रात भर, बैरी बिछिए कसकते हैं रात भर। ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, पहना दो मुझे चूही चमेली के गहने। मेरे प्रीतम मुझे पहना दो बेले की पायल, सजा दो उंगलियों को जूही की कलियों से। गुलाबी कोमल चरण महक उठेंगे उनकी खुशबू से। बैरन चूड़ियां खनकती है रात भर, कसकती मचलती मौलती है रात भर। पहना दो मुझे बेले के कंगना गुलाब के हार, मेरे साजन पहना दो मुझे फूलों के गहने। मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों के गहने, मेरे प्रीतम मुझे पहना दो फूलों के गहने। तो ये एक नवविवाहित दुल्हन की ओर से कविता है जिसको इतने सारे गहने पहना देते हैं और फिर वो परेशान होती है रात भर। कभी चूड़ियाँ खनकती हैं, कभी पीछे उसको तंग करते हैं, कभी उसके कान की जो भारी भारी झुमकियाँ होती हैं वो उसको परेशान करती हैं। तो उसको लगता है ये सब उतारो और बस फूलों के गहने पहन लो जो कोमल और सुंदर है। तो बस मेरी कविता फूलों के गहने यही समाप्त होती है, और सुन के आपको ऐसा लगा हो जैसे बसंत उत्सव आ गया हो, न्यूली वेड कपिल और न्यूली वेड नवविवाहिता की ओर से ये कविता। बस ऐसी मेरी कहानियाँ कविताएँ आप लोग सुनते रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मेरी कहानियाँ मेरे पॉडकास्ट मालती के फूल में भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा प्रतिलिपि FM पर भी मेरी कहानियाँ उपलब्ध हैं। तो बस सुनते रहिए ऐसे ही।